श्रीमद् भागवतम 10/19/12 डेट 22 फरवरी 2015 वक्ता नटनगर प्रभु
योगाधीशो व्यमोचयत् तथेति मिलिताक्षेषु
शब्दार्थ तथा बहुत अच्छा इति ऐसा कह कर मिलित बंध करते हुए अक्षेशु अपनी आँखें भगवान अग्निम अग्नि को उल्बणम भयानक पीत्वा पीकर मुखेन मुख से तान उनको कृत्रात संकट से योगदेश समस्त योग शक्ति के परम नियंता व्यमोचयत उद्धार कर दिया। अनुवाद एवं तात्पर्य शेष भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद बालकों ने उत्तर दिया बहुत अच्छा और तुरंत ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब समस्त योग शक्ति के स्वामी भगवान ने अपना मुख खोला और उस भयानक अग्नि को निगल कर अपने मित्रों को संकट से बचा लिया। तात्पर्य ग्वाल बाल अत्यधिक थकान भूख तथा प्यास से त्रस्त थे और विकराल दावाग्नि से झलने ही वाले थे। इस स्थिति का संकेत कृत्रात शब्द से मिल जाता है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते भूपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। वेदों में अथवा तो शास्त्र में चार प्रकार के पुरुषार्थ दिए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। साधारणतः इस संसार में रहने वाले हरेक मनुष्य को या हरेक मनुष्य इन चार वस्तु के लिए पुरुषार्थ करते हैं, धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से कामना और कामना के बाद मुक्ति। लेकिन श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि साधारण मनुष्यों के धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति और वैष्णवों के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वैष्णवों के लिए नहीं है जो वेदों में कहा है। वेदों की बात खंडित हो जाएगी, है ना? वैष्णव गण कभी शास्त्रों की आज्ञा का अवज्ञा नहीं करते हैं। शास्त्रों का ठीक ठीक जो पालन करते उसको ही वैष्णव कहते हैं। तो वल्लभाचार्य जी निराकरण देते हुए कहते हैं कि वेदों में जिन धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की बात की गई है वो साधारण मनुष्यों के लिए है, लेकिन श्रीमद् भागवत में भी धर्म वैष्णवों का, वैष्णवों का अर्थ, वैष्णवों की कामना और वैष्णवों की मुक्ति बताई गई है, ये वल्लभाचार्य जी कहते हैं। तो प्रश्न तो क्या है वैष्णवों के लिए धर्म? अगर आप कहते हैं कि वेदों में जो धर्म का वर्णन है वो वैष्णवों के लिए नहीं है, तो वैष्णवों के लिए क्या धर्म है आप बताइए? तो कहते हैं कि बत्रासुर जी ने जो चार श्लोक में भगवान की स्तुति की है उनमें सबसे प्रथम श्लोक है वो वैष्णवों के लिए धर्म है। क्या है वैष्णवों का धर्म? अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मन स्मरेता सुपते गुणास्ते गृणीत वाक कर्म करो तु काय हे असुपते। असु का अर्थ होता है प्राण। हे प्राणपते, अहम हरे तव पादे कमूल दासानुदासो भविता। भविता मतलब कब भूय फिर से मैं आपके दास अनुदास का पद प्राप्त करूंगा और मेरी वाणी आपके गुण कीर्तन में लगी रहेगी, यही वैष्णवों का धर्म है। मन स्मरण करता रहे नित्य निरंतर, वाणी भगवान का गुणगान करती रहे, यही वैष्णवों के लिए धर्म है। अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि न नाक पृष्ठम न से। अर्थ का अर्थ होता है लाभ, कुछ प्राप्त होना, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। मुझे ध्रुव पद नहीं चाहिए, न नाक पृष्ठम न से पारमेष्टम न सार्वभौम न रसाधिपति। और इसके बाद काम, क्या वैष्णवों के लिए काम है? अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्स दराक्षुधारता प्रियम प्रियव व्यसितम विषिणा मनोरविंदाक्ष दिद्रक्षते त्वम। आपके दर्शन की झंखना के लिए, लालसा के लिए मेरा मन तीन प्रकार के उदाहरण देकर कह रहा है कि इस तरह मेरा मन प्रतीक्षा कर रहा है, या तो उत्कंठा है जैसे अजात पक्षाई व मातरम खग। और वैष्णव के लिए मोक्ष कह रहे श्रीपाद वल्लभाचार्य कि ममोत्तम श्लोक जनेशु सक्षम संसार सक्रे भ्रमत स्व कर्म भी तन्मायातो बुद्ध आभजेतम तन्मायात्म जदार गेह स्वासक्त सितस्यन नाथ भूयात स्वकर्म भी भ्रमत संसार चक्र। इस संसार चक्र में स्वकर्म भी अपने कर्म से जो व्यक्ति भ्रमण करता है और तत् माया, तत् मतलब भगवान की माया से जिनकी एक ही मति गति है वो क्या है, आत्मा आत्मज दार गेहेशु आसक्त, अपने में, अपने परिवारजनों में, घर वालों में इत्यादि में जो आसक्त है, आसक्त चित वाले है न भूयात हामाय न मळे, गुजराती में कहें तो ये हामाय न मळे ना, मतलब उसका संग कभी मुझे प्राप्त हो ही नहीं। किसका संग चाहते हो तो कहते उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक जनेषु, भगवान को उत्तम उत्तम श्लोकों से स्तुति की जाती है, इसलिए भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। और उसके जन मतलब वैष्णव गण, जो वैष्णव है उन वैष्णव का ही संग मुझे प्राप्त हो, यही वैष्णव के लिए मुक्ति है। अर्थात इन सभी श्लोकों का सार क्या हुआ, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि वैष्णवों के संग में बैठकर भगवान हरि का कीर्तन करना, भगवान की कथा सुनना, यही वैष्णवों के लिए मुक्ति है और कुछ नहीं है। श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को यह सरलता से प्राप्त हो गया है, इसलिए कभी कभी लेकिन ये सबसे बड़ा सौभाग्य है। 7 दिनों में हम लोग सुबह में 8 से 9 9:30 बजे जो भी समय निकाल कर आ पाते, 7 दिन में वास्तव में वही समय सबसे श्रेष्ठ और बेस्ट है। ये शास्त्रों के द्वारा बात प्रमाणित हुई कि वैष्णवों के संग में बैठकर कीर्तन करना, श्रवण करना, यही सबसे वैष्णवों के लिए यही मुक्ति। ध्रुव महाराज ने भी कहा है कि हे प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, स्वब्रह्मणी ननाथ महाभूत वो ब्रह्म में, वो आपका ही अंश होते हुए ब्रह्म में भी वो आनंद नहीं है, वो सुख नहीं है, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। क्या अमल आत्मा नाम, अमल आत्मा आपके भक्तों के श्री मुख से मैं हरि कथा कीर्तन सुनूंगा तो मुक्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी, उनकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन उनमें जो आनंद है वो ब्रह्म में भी नहीं है। ब्रह्म में क्या है, ब्रह्म में क्या, सुख भी नहीं दुख भी नहीं। तो कहने का परपट तात्पर्य यह है कि सबसे सुंदर, सबसे सौभाग्यशाली समय कोई है तो यही संडे का 8 से 9:30 का। हम लोग तो साप्ताहिक भक्त है, इसलिए यही हफ्ते में यह शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित कर दे श्रीपाद वल्लभाचार्य। यहाँ पर मंदिर में दशम स्कंद स्टार्ट हो गया है, 19 अध्याय तो चला गया है ना। इस अध्याय में दावाग्निपान, इसका नाम है दावाग्निपान, भगवान दावा नल पी गए। दाव का अर्थ होता है जंगल और अनल का अर्थ होता है आग। जंगल में लगी हुई आग को दावानल कहते हैं। तो श्री बलराम जी ने प्रलम्बासुर का वध कर दिया। इसके पश्चात भी सखागण वही मस्ती में खेलने लगे, भूल गए वो सब कौतुक ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रलम्बासुर का वध हुआ था और लीला ब्रह्मा वो बलराम जी ने कैसे मारा, वो सब भूल के फिर भी फिर आसक्त हो गए खेलने में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि क्रीड़ा सक्तेशु गोपेशु तदगावो दुर्चारिणी स्वेरम शरंतो विवशु तृण लोभे न गहवरम। तो बस ये जब आसक्त हो गए खेलने में तो तृण लोभे न, तृण लोभ के कारण वो जब गाय थी वो दूसरे वन में चली गई, मूंजा टी मूंजा वन में। ऐसा भी नहीं था कि यहाँ पर घास नहीं था, घास था ही लेकिन तृण लोभे न, ऐसा भी नहीं था कि उसकी भूख, लेकिन आज कुछ ऐसा दिन था कि वो गायों की भी भूख मीठी नहीं रही थी। भगवान को आज एक अलग लीला करनी थी तो गायों की, आज तक कभी गाय गए नहीं है दूसरे वन में, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि तृण लोभे न, तृण लोभ से गैया दूसरे वन में चली गई। तो वहां पर बहुत सारे भाव दिए गए हैं कि लोभे न शब्द, सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा तो नहीं कहा कि भूखे न, भूख से पीड़ित थी इसलिए गई, ऐसा तो नहीं, क्योंकि भूख का तो कोई प्रश्न, वहां घास था ही। लेकिन उस वन में, मुंजा वन में, वो आगे वर्णन आएगा कि वहां पर आज तक तो कोई पशु नहीं गए थे, क्योंकि वो घास ही ऐसा था, वहां से एक बार जाने से वहां से वापस आना बहुत मुश्किल हो जाए, उसमें एक बार घुस गया तो लोभे ने, यहाँ पर घास होते हुए भी वहां पर अच्छा घास देखकर वो लोग वहां पर गए, तो एक वस्तु को जो अपने पास है उसको छोड़ दिया, था ही लेकिन छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? लोभे न, लोभ से दूसरी वस्तु के, तो एक वस्तु अपने पास जो वस्तु दूसरी लालसा करेगा तो व्यक्ति फंसेगा ही, क्यों नहीं फंसेगा? इसलिए हरिशूरी जी कहते हैं कि अपने पास जो वस्तु है उसमें व्यक्ति को संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी वस्तु को छोड़कर कोई दूसरे की वस्तु पकड़ने के, उसको देखकर पकड़ने के लिए जाएगा तो वो फंसेगा ही, है ना? 10 लाख की कैपेसिटी वाला व्यक्ति 1 करोड़ का इन्वेस्ट करेगा तो फंसेगा ही, क्योंकि उसकी हैसियत ही नहीं है, है ना? तो तृण लोभे न, तृण लोभ से वो गए और फंस गए। क्यों? क्योंकि उनमें लोभ उत्पन्न हो गया। इसके बाद कहते अजागाहो महिष्यस्य निर्विश्व बनाद वनम, इसी काटवे निर्विश्व क्रदंतो दावत अर्षिता। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत में पहली बार और लास्ट बार ये एक श्लोक आया है कि अजा गाओ महिष्यस्य, अजा कहते हैं बकरी को, गाओ मतलब गाय, और महिष्यस्य, महिष मतलब भैंस। तो अनुवाद आप देखिए, विशाल जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हुए बकरियां, गौवे तथा भैंसे अंततः मूंज से आच्छादित प्रदेश में घुस गई। पास के जंगल की अग्नि की गर्मी से उन्हें प्यास लग पड़ी और वे कष्ट के कारण चिल्लाने लगी। आप लोगों ने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना होगा कि भगवान बकरियां और भैंसे चराते थे, सुना है किसी ने? लेकिन श्लोक तो कह रहा है और अनुवाद में भी लिखा है कि भगवान बकरियां, जो क्या लिखा है, विशाल जंगल के एक भाग से दूसरे भाग में जाती हुई बकरियां, गावे तथा भैंसे, और श्लोक भी कह रहा है अजा का अर्थ होता है बकरी, गाव का अर्थ होता है गाय, और महिष्य का अर्थ होता है भैंस। तो भैंसे मुंह से आच्छादित प्रदेश में घुस गई, पास के जंगल की अग्नि की गर्मी से उन्हें प्यास लग पड़ी और वे कष्ट के कारण चिल्लाने लगी। अब पहली बार ऐसा हुआ कि भगवान क्या बकरियां चराते थे, भैंसे चराते थे? वास्तव में प्रश्न है, क्योंकि आज तक सुना नहीं और किसी भी पिक्चर में आया भी नहीं। आपने गाय का चिन्ह फोटो पिक्चर देखा होगा, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ कि भैंस भी 2-3 है और 2-3 बकरियां भी भगवान के पास? नहीं, आज तक नहीं सुना और किसी ने नहीं, आज तक आए ही नहीं, लेकिन श्लोक कह रहे हैं। तो अलग अलग भाव उन पर दिए गए है। अजा का एक अर्थ होता है जो जन्मी, अभी तक जो गाय जन्मी नहीं है उसको अजा कहते, क्योंकि वैष्णव गण कृष्ण के साथ गाय का ही भाव लेते, वो भैंसा बकरिया इसका भाव नहीं लेते। तो वैष्णव की व्याख्या में वैष्णव गण कहते हैं टीकाकारों, अजा का अर्थ होता है जो गाय अभी विवाह, जो गाय अभी ब्याह ही नहीं है, मतलब एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिए, उसको अजा कहते। गाव मतलब गाय, वो तो सीधा सा अर्थ है ही। और महिषी, महिषी कहते हैं महारानी को, महारानी जो होती है उसको महिषी कहते हैं। तो जो गाय 3-4-5 बच्चे को जन्म दे गई है उनको महिषी कहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वेदव्यास जी की वाणी का ऐसा प्रभाव है कि उस वाणी को ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। यहाँ पर बकरी और भैंसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर गायों की बात हो रही है, लेकिन तीनों प्रकार की गाय है। कहने का मतलब तात्पर्य परपर्य है कि छोटी गाय भी है, मध्य वर्ग की गाय भी है और बूढ़ी गाय भी है, इसलिए यहाँ पर कहा है अजा गाहो महिष्यस्य। लेकिन सीधे सीधा डायरेक्ट आप अनुवाद करोगे तो इसका अनुवाद यही होगा कि बकरी गाय और भैंस, लेकिन वो बकरी और भैंस के अर्थ में नहीं है, छोटी गाय और बड़ी गाय के अर्थ में है। तो वो लोग ऐसे बहुत सारे भाव दिए गए, तो वो लोग सभी गाय वो मूंज वन की ओर गई और वहां पर घास तारा के लोभ से गई, और वहां पर जाने के बाद तुरंत उनको प्यास लगी। तो इस तरह क्या करते थे गोपगण, वो खेलने में आसक्त थे, तो खेलने में आसक्त इतने आसक्त हो गए इतने, तो उनको पता ही नहीं चला कि गाय कहाँ, सब गाय कहाँ पर गई। क्यों आसक्त नहीं होंगे, महाराज जी कहते कि क्यों आसक्त नहीं होंगे, भगवान श्याम सुंदर त्रिलोकीनाथ जिनके साथ खेल रहा है। साधारण व्यक्ति भी अगर किसी वस्तु में या किसी वस्तु विशेष में अगर सामने आ जाती है अपनी प्रिय वस्तु, तो वो भी कुछ क्षण के लिए बाहरिक मनोभाव को खो बैठता है ना। कभी कभी हम जाते हैं रास्ते में कोई मिल जाता है और कोई गहरे विचार में होते हैं, तो आंखें सामने जाते हुए भी पता नहीं रहता कि वो व्यक्ति गया है ना। कभी कभी आप सब यहाँ पर बैठे हैं लेकिन मन कहीं दूसरी जगह हो, तो कथा क्या हो रही है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बैठे है सामने है, तो इतना आसक्त हो जाते हैं कि यहाँ का ही बाहरी भावावेश खो बैठते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर जिनके सामने खेलते हो वो बच्चे क्यों नहीं आन, इतने आसक्त हो गए थे, वो तो भूल गए प्रलंबासुर का वध भूल गए। ऐसा तो रोज होता रहता है, कृष्ण के सामने आकर भूल गए, लेकिन इतना आसक्त हो गए आज तक कभी नहीं हुआ कि गाय भी कहीं दूसरे वन में चली गई। एक सखा ने देखा कि गाय नहीं है, हमारा तो गोधन ही वही है, हम क्या करेंगे गाय, ऐसे अनेक प्रकार के विचार करने लगे। विचार करते करते सभी ने कहा कि अब हमको गाय ढूंढना चाहिए, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बहुत मनोभाव दिए गए, बहुत मनोभाव सब लोग। कृष्ण ने ढूंढने का प्रयास किया, इसके बाद कहते हैं कि कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और नाम से पुकारने लगे, रंभा नंदिनी इत्यादि जो जो भी गाँव थी अपना उत्तीर्य उछाल कर भगवान कहने लगे। तो गाय भी सामने भगवान की आवाज सुनकर मेघ गर्जना, भगवान की वो गर्जना कैसी थी, मेघ गर्जना, मेघ के समान। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी बादल टकराता है तो पूरे बम्बई में आवाज आता है ना, एक बादल टकराता है आकाश में तो पूरे बम्बई में, कोई लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी जब भागवत कहते हैं तो वर्णन है कि मेघ मेघ की तरह ऐसी गर्जना होती थी, वहाँ कोई लाउड स्पीकर की तेरी जरूरत भी नहीं थी, ये वाणी का प्रभाव, उनके वाणी का यह प्रभाव। तो वैसे ही भगवान तो पुकारने लगे, भगवान जब पुकारने लगे नाम दे देकर अपनी अपनी गायों का, तो सामने गौ सुन लिया, तो गाय भी रंभाने लगी, क्या तो अब तालमेल तो मिल गया, तो कहाँ कम से कम कहाँ से कौन से वन में हो तो पता चल गया कि मुंजा वन में है। तो सभी बच्चे और कृष्ण के साथ सकृष्ण बलम, कृष्ण और बलराम जी के साथ सभी बाल बाल गायों को ढूंढते ढूंढते वहां पर वो वन में गए। तो जब वो वन में गए तो प्रलंबासुर का कोई हितेशी मित्र ने मौका परखा कि अब मौका है कि इस वन को आग लगा दी जाए, या तो महाराज जी कहते कंस का ही कोई अनुसर था जिन्होंने आग लगा दी, तो जो भी है लेकिन वो मौका परख कर वो आग लगा दिया। कभी मौका है ये लोग यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जलकर मर जाएंगे। तो जैसे ही आग लगी तो सभी लोग चिल्लाने लगे। सूरदास जी ने तो बहुत सुंदर वर्णन किया है आग कैसे लगी और आग की लपेट से पशु पक्षी का वर्णन किया गया है, सभी पत्र पुष्प का वर्णन, सभी वृक्षों का वर्णन किया गया है। बहुत सुंदर एक पद में, पूरे पद में वर्णन किया है कि कैसे आग लगी और आग के प्रभाव से वृक्ष गिरने लगे, पशु पक्षी चिल्लाने लगे, सब जितनी भी लता पता थे सब दावाग्नि के कारण, दावा नल के कारण वो सब गिरने लगे, बड़े बड़े वृक्ष गिरने, वो बहुत भयंकर दावा नल था। तो बस से चिल्लाने लगे, उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं रहा। गाय भंभराने लगी कि अब क्या करे क्या करे। सभी लोग बलदेव जी के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण में गए। तो कृष्ण कृष्ण कह करके उन गोपों ने स्तुति की, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामा मोघ विक्रम। तो दो बार कृष्ण कृष्ण का क्या मतलब है, एक बार भी कृष्ण कह देते चल जाता है ना। तो ईश्वर श्री हरिशूरी जी लिखते हैं कि नाम संकीर्तन कर रहे हैं, सकृत अपि तव नामनि सिधर उदीरिते सत्यनुभवति जनो अस्मिन् सर्वतः ताप शांति त्वयि सती सदया सदयास्म सक्षुर आलिट रूपे यदि न शमम उपे या देश चित्रम किम अस्मात्। सकृत अपि तव नामनि सिधर उदीरिते, कोई व्यक्ति सिधर ऐसा भगवान का नाम बोलता है, सकृत अपि कितनी बार, एक बार, सत्य अनुभवति जनो अस्मिन् सर्वस्ताप शांति, तो उन व्यक्तियों का, उन लोगों का सभी प्रकार का ताप शांत हो जाते हैं। तो हे प्रभु, आप तो स्वयं प्रकाश हमारे सामने है, तो क्या हमारा दुख दूर नहीं होगा, मतलब अवश्य होगा, इसलिए दो बार कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। दो बार कृष्ण कृष्ण का मतलब कि अनेक बार कृष्ण। वैसे भगवान का स्मरण करके उन लोगों ने स्तुति की, कृष्ण से योग वीर्य तद योग मायन इत्यादि, नूनम तद बांधवा कृष्ण न चारहंति अवसादी तुम वयम ही सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथ तत्परायण। आप सर्वधर्मज्ञ है, हम आपके ना, सारस्वत अर्थ तो यही है कि हम आपके नाथ हैं, लेकिन गौ गोप बालक कह रहे हैं कि आप हमारे नाथ हैं। तत्परायण हम लोग, हम आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेंगे, क्यों कृष्ण के शरण में गए, वो सब तो समान भय के ही थे। तो कहते हैं कि उन लोगों ने सुना था, पौर्णमासी भांडे ऋषि इत्यादि के श्रीमुख से सुना था कि अनेन सर्व दुर्गाणी, गर्गाचार्य जी की वो बात, गर्गाचार्य ने कहा था कि यही सर्व दुर्गाणी सब बाधाओं से आपको मुक्त करेंगे, मतलब भगवान कृष्ण। तो उन बात को स्मरण कर सभी गोप भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते कि वसो निशम्य कृपणम बंधुनाम भगवान हरि निमिलयत माभेष्ट लोचनानि इति अभाष। वसो निशम्य कृपण कृपणम बंधुना, आह क्या शब्द दिया है, उनके उन बंधुओं की वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान श्री हरि ने कहा, क्या कहा, निमिलयत माँ भेष्ट, आप डरिए मत, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करने की, आप अपनी आँखें मूंद लीजिए, आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए। क्या होगा आँखें बंद करने से, आँखें क्यों बंद करने के लिए भगवान ने कहा, तो इन पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि पहले एक बार भगवान ने आग पिया था कालिया के समय, तब तो अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस बार सामने ही अगर आग पी जाऊंगा तो लोग वह सोच कर दुखी हो जाएंगे कि कृष्ण ने आग इतनी गरम गरम आग पिया तो क्या होगा, कैसे होगा कृष्ण को, तो वो दावाग्नि में वो लोग दग्ध होंगे। तो इसलिए अगर सामने आग पी जाते तो हो सकता है उनका अनिष्ट हो। तो इसलिए भगवान ने कहा आंख बंद करने के लिए। बहुत सारे उन पर हरीश्वरी जी ने भाव दिए हैं, उनमें से पहला भाव यह है कि आंख क्यों बंद करने के लिए भगवान ने कहा। श्लोक में आया है निमिलयत मापेष्ट लोचनानी अति अभाषत, चिंता मत कीजिए आप अपनी लोचनानी निमिलयत, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो इन पर से हरीश्वरी जी कहते हैं एते स्थूल दृश्य अखिला अपि गवम पाला, ये सब स्थूल दृश्य है। क्यों स्थूल दृश्य है, अखिला अपि गवम पाला, स्थूल वो बाल बाल है इसलिए स्थूल दृश्य है। इतना कुछ बहुत जानते नहीं है वो, इतने बड़े वो विद्वानों के विद्वान, विद्वानों के भी बाप है, बड़े बड़े विद्वानों की जहाँ पहुँच नहीं है वहाँ वो कृष्ण के साथ खेल, लेकिन बाहर एक भाव प्रकट कर रहे हैं कि ये स्थूल दृश्य है। अभी गवाम पाला उनमें भी ये गोपालक है, सभी अंतरा और भय से युक्त भी है। तो बहनी सेवा दुरंत कील कील कलित तन्नात्र योगम विना एतत् शांतिर साध्वसम। तो भगवान कह रहे हरिश्वरी जी कह रहे कि भगवान के मनोभाव को भगवान कह रहे कि योग विना उनकी शांति नहीं होगी। योग मतलब आज का योग की बात नहीं, भक्ति योग की, योग बिना उसकी शांति नहीं होगी। दूसरा तो कुछ जानते नहीं है, गवाम पाला है और भय से, तो योग बिना उसकी शांति होगी नहीं। तो योग का प्रथम अंग है आंख बंद करना, तो इसलिए भगवान सबसे प्रथम आंख बंद करने के लिए कह रहे हैं कि आप अपनी आंख बंद कर ले, मतलब योग सिखा रहे हैं कि स्थूल बाहरी दृष्टि को मत देखिए, आंतरिक अंदर देखिए तो आपका सब दुख समाप्त हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात कह रहे हैं कि भवात अभियम विकट स्वरूपा तपोपि तस्याम विषयाग्नि जात स्वदृग गृहीतो न स्वास्थ्यो स्थित भूस्फुटम नेत्र निमिलनोक्तया। नेत्र निमिलन उक्तया, भगवान अभी नेत्र बंद करने के लिए कह रहे हैं ना, और उसके बाद दो श्लोक के इसके बाद 13वें श्लोक में भगवान आंख खोलकर जब भांडेर वन में चले जाएंगे तो भगवान कह रहे, भगवान कहेंगे कब आप अपने नेत्र खोल दीजिए। भगवान इसके बाद नेत्र खोलने के लिए कह रहे हैं, तो भगवान आंख बंद करने के लिए कहा और बाद में वो खोलने के लिए कहा। तो वास्तव में ये संसार विकट उनके लिए है और तापद है जिनकी आंख संसार की ओर है, लेकिन संसार की ओर से आंख बंद करके जो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण का चिंतन करे उनके लिए न तो कोई आग है न संसार है। वह दृश्य भी खत्म हो गया मुंजाटवी का और आग भी खत्म हो गई। उन्होंने देखा कि हम जहाँ पर थे वहाँ पर ही, मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो गए। कितना सुंदर भाव है, कोई व्यक्ति हरीश्वरी जी भगवान के मन के भीतर जाकर उत्प्रेक्षा लिखी है, टीका नहीं उत्प्रेक्षा, उत मतलब ऊपर, प्रेक्षा मतलब ऊपर उठ के भगवान के मनोभाव में किसी भी व्यक्ति कुछ कार्य करने के पहले कुछ चिंतन करता है, कुछ सोचता है, कुछ विचारता है, विचार करता है, तो भगवान भी सखाओं के साथ खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो भगवान भी कुछ सोचते होंगे ना। तो भगवान जो सोच रहे हैं उन विचार को हरीश्वरी जी उनके मन में जाकर प्रकट कर रहे हैं कि भगवान क्या क्या सोच रहे हैं, क्यों आँख बंद करने के लिए कह रहे हैं। कितना सुंदर भाव है कि ये संसार उनके लिए है, किसके लिए, जिनकी दृष्टि बाहरिक है, लेकिन जो बाहरिक नहीं देखता है आंतरिक देखता है, मतलब भगवान को ही जो देखता है उनके लिए कुछ संसार नहीं है। उनके लिए कोई ताप नहीं है, कोई दावाग्नि नहीं है, उनके लिए दावाग्नि खत्म हो जाएगी। इसके बाद बहुत सारे भाव दिए गए हैं, लेकिन इतनी बुद्धि भी नहीं है और इतना भान भी नहीं है कि हम लोग समझ सके, मैं समझ सकूं, आप लोग केवल परोक्ष प्रियोस्तम सोमाचिक सकार प्रयोग परोक्ष प्रिय। भगवान अगर किसी को देना चाहते हैं तो क्या देते, परोक्ष में देते हैं, जैसे सुदामा को दिया है ना। भगवान अपने भक्तों को परोक्ष में प्रिय करते हैं। परोक्ष में प्रिय का अर्थ सामने नहीं, सामने थोड़ा संकोच हो जाता है, एहसान लगता है कि ये एहसान किया, इसलिए परोक्ष में देना चाहिए। विधि भी है कि अभी तो क्या, अभी कलयुग है, कलयुग का बहुत बड़ा, अभी तो सामने सामने बड़ा बड़ा झिकेंगे और दो ही पैर आप आगे जाएंगे तो आपके हो ही काट, सबसे प्रथम आपको ही काटेंगे, ये कलयुग का प्रो। लेकिन भगवान का स्वभाव ऐसा नहीं है, भगवान परोक्ष प्रिय हरि। भागवत में पंचम स्कंद में आया है और एकादश स्कंद में भी आया है, तो भगवान परोक्ष में अपने सखाओं का हित करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने सोचा कि सामने दूंगा तो थोड़ा लज्जा आएगी, उनको भी भगवान ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया, कृष्ण ने ये कर दिया, तो कभी कभी लज्जित हो तो परोक्ष में, मैं परोक्ष में, इसलिए भगवान वो देख ना पाए कि भगवान कृष्ण ही पी गए, इसलिए भगवान ने कहा आप आँख बंद कर लीजिए। तो एक ग्वाल ने कहा, ये कौतुकी कर रहा है, सीरियस होता ही नहीं है, जब भी देखो मुश्किली में हो, कहीं पर भी हो, कौतुकी करता रहता है, मजाक ही करता रहता है, वो सीरियस कभी होगा कि नहीं। कृष्ण एवरग्रीन 24/7 वो मजाक के ही मूड में रहते, वो हंसने के नाचने के मूड में रहते, वो गंभीर आप देख ही नहीं, देखोगे ही नहीं कभी कृष्ण ने मोटू सड़ावीन बैठा हो, मुंह लटका के बैठा, ऐसे आपने देखा कभी नहीं। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करते हैं, हम लोग दो बच्चे और एक पत्नी को, टोटल 3 और 4, 4 लोगों का भरण पोषण करने में दिन में 24 घंटों में 16 घंटा तो टेंशन में रहते हैं, अब क्या होगा, वो होगा कि नहीं होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सिर्फ 3-4। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्थिति लय और पालन, लेकिन भगवान के मुंह सदा प्रसन्न कौ, और ये कृष्ण लीला में तो हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं, मजा करते रहते हैं। एक प्रसंग याद आ गया कि भगवान कौतुकी कैसे करते हैं, तो भगवान जब छोटे, अभी छोटे ही है कथा के अनुसार, तो सबके घर में माखन चोरी करने के लिए जाते थे, तो सबके घर में माखन चोरी करने के, सभी गोपी फरियाद करती रहती थी कि यशोदा आज कृष्ण ने इतना माखन बिगाड़ दिया, अरे खाए वो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन वो साथ में क्या कर, बंदरों को भी खिला देते हैं, थोड़ा नीचे भी डाल देते हैं और मटका भी कभी कभी फोड़ देते हैं, कोई गोपी बहुत परेशान करती तो उसका मटका भी फोड़ देते हैं, बंदरों को खिला देते, वो खाकर जाए, तो गोपी तो चाहती थी वास्तव में कि वो कृष्ण हमारे घर आए, ऐसा करे तो हम देखे, वो आनंद में मग्न, रसा मग्न हो जाती थी वो रस में, आनंद सिंधु में। तो बहुत गोपी की फरियाद हो गई तो यशोदा ने मन ही मन विचार किया, लेकिन यशोदा तो यशोदा है, वो ऐसा थोड़ी कैसे हो सकता है, मेरे पास इतनी गाय है न, कुछ गायों को मैं स्पेशल दूध इकट्ठा करके एक गाय को पिलाती हूँ न, इसके बाद उसका दूध आता है वो मैं स्पेशल कृष्ण के लिए रखती हूँ, हमारे घर में इतने दूध दही मक्खन है तो तुम्हारे घर में क्यों आएंगे। लेकिन बहुत फरियाद आने लगी, इसके बाद यशोदा ने भी सोचा कि ये सब फरियाद कर रहे तो इस बात में कुछ होगा। यशोदा नंद गए ही नहीं एकदा, तो वह स्मरण कर, वह बात को स्मरण कर ही, टीकाकारों का वहां पर दधि मंथन प्रसंग में कहना है कि वह बात को स्मरण करी यशोदा खुद एकदा नंद गए, यशोदा नंद गए, वह बात को स्मरण करी यशोदा दधि मंथन करने लगी कि अपने हाथ से माँ के मुख, कोई भी बच्चा दूसरों के हाथ में खाए और माँ के हाथ में खाए तो माँ के द्वारा परोसा गया, माँ के द्वारा उसमें ज्यादा आनंद है। ये बात लौकिक बात और प्रसिद्ध बात है ना कि माँ के हाथ का खाना ज्यादा सुस्वादु लगता है, ज्यादा मधुर होता है, मीठा होता है। तो यशोदा जी ने मन में विचार किया, ये गोपियों ने बहुत फरियाद की, फरियाद आ रही है तो चल आज मैं ही तो माखन वाखन निकाला, लेकिन कृष्ण को तो माखन के साथ मतलब नहीं था, उसको कौतुकी के साथ आनंद मस्ती मजाक के साथ ही उसका संबंध था। लेकिन उसका कार्य जो चोरी का था वो रुका नहीं, ऐसे ही चलता रहा। एक दिन पकड़ा गए, पकड़ लिया गोपी ने, तो पकड़ लिया तो कृष्ण तो रड़ने लगे ने कहने लगे ऐसा करूंगा न वैसा करूंगा न अब नहीं आऊंगा, बहुत बात हुई लेकिन नहीं, आज मैं यशोदा को कह कर ही रहूंगी कि देख यशोदा तू मानती नहीं थी ना, लेकिन तेरा लाला हमारे घर का ही माखन खाता है और सब बंदरों को खिला देता है, आज ये प्रमाण हो गया, आज ये सबूत हो गया। एक हाथ पकड़ा भगवान श्री कृष्ण का, गोपाल का हाथ पकड़ कर ले जा रही है और सारे रास्ते में चिल्लाती जा रही है कि देख लिया सभी, सब गोप गोपी, सभी गोपी बाहर आ जाइए, देखो आज पकड़ लिया, आज चोर को पकड़ लिया, आइए सब लोग हम लोग साथ में जाएंगे। और सब लोगों को इकट्ठा किया, चिल्लाती चिल्लाती वो गोपी जा रही थी, इनमें उनके ससुर सामने आए। तो यहाँ तो प्रथा नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी प्रथा है कि अगर अपने से अपने पति से कोई बड़ा आता है तो स्त्री अपने मुख ढक लेती है, एक मर्यादा है। तो वो अपना मुख ढकने गए तो हाथ कृष्ण का हाथ था, वो हाथ से अपना मुख ढकने के लिए गए तो कृष्ण साइड में आ गए, कृष्ण ने उनके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। तो वो तो अभी उनके ही मूड में है, उनका बेटे का हाथ पकड़ कर आज दिखा दूंगी, यशोदा को कह दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, यशोदा का द्वार आया, ए यशोदा चिल्लाने लगी यशोदा। और वो भाई कृष्ण है, वो पिछली बारी से नंद भवन में अपने रूम में पीछे से, लेकिन सब बोले ना यशोदा इतना क्यों, आज तक ऐसा हुआ नहीं, इतना क्यों चिल्ला रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यशोदा जी ने कहा कि क्या बात है, क्या हुआ, बड़े प्रेम से कहा, तू मानती नहीं थी, हम लोग तुम्हें हर रोज कहते थे, लेकिन यशोदा क्या, लेकिन बात क्या है, देख तेरे लाला ने क्या किया, सबूत के साथ आई हूं, अभी वो तो पीछे देखती नहीं है, वो तो बहुत फॉर्म में है कि आज मैंने पकड़ लिया कृष्ण को। यशोदा ने क्या कर? देखिए तेरे लाला, तू मानती नहीं थी ना आज मैंने, लेकिन यशोदा जी ने बड़े प्रेम से कहा कि वो मेरा नहीं है, तेरा लाला है, तू जरा देख तो देखा तो आए रे तू कहां से टपुड़ा मोरारी बाबू कहे तू कहां से टपुड़ा आ गया मतलब किसी वो तो ऐसे मजाक में कह दिया, लेकिन वो उनके बेटे का हाथ वायरा और कृष्ण ऊपर से देख रहे सब, वो हंस रहे, गोपी को कहा कि बाद में ठुमक ठुमक करके वो नीचे आए और कान में आकर गोपी को कहा कि इस बार जाने देता हूँ, अगली बार ऐसा किया तो तेरा पति का हाथ पकड़ा दूंगा हाय राम तो मतलब ऐसे बहुत करतूत करते रहते थे। तो सब लोगों को, सब गोपों को विश्वास तो हो ही नहीं रहा था कि आंख बंद करवा कर क्या करेगा, यहाँ भी मस्ती करेगा उसका सोबर। तो एक गोप ने बड़े विश्वास के साथ कहा कि क्या कहा कि नहीं नहीं हमारा कृष्ण है, वो कोई चमत्कार जानता है, उसका प्रमाण दिया। आप लोगों को पता है कि वो विष का प्रभाव हम पर नहीं आया चढ़ा था, जब हम गए यमुना के घाट पर वो रथ के पास पे और वो दावाग्नि पहले भी एक बार दावाग्नि कुछ मंत्र जानता है तो मंत्र के प्रभाव से वो दावाग्नि भी शांत हो जाती है। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं ना, तो उस मंत्र सबके सामने नहीं बोलने, सबके सामने नहीं बोलते, एकांत में उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग देख न लेना, इसलिए वो हमको। तो सब लोगों ने कहा कि तथेति मिलिताक्षेषु भगवान अग्निमूल बणम पीतवा मुखेन तान तथा इति मिलिताक्षेषु, अपने आँखों बंद करने पर तो गोप लोगों ने आपस में वह चर्चा करके अपने आँखें बंद कर ली कि वो निश्चित रूप से कोई मंत्र मंत्र जानता है। तो हम लोग आँखों को क्या जा, वैसे भी कोई रास्ता नहीं है, अगर दूसरा कोई रास्ता होता तो ठीक है कि अभी कृष्ण की बात नहीं मान, लेकिन दूसरा ऐसे भी कोई रास्ता नहीं है, तो ठीक है इस बार जो भी होगा। तो तथेति मिलिता अक्षेषु, अक्षेषु मिलिता, आँख बंद करने पर योगाधीश भगवान, भगवान योगाधीश, वो योग के योग, योगेश्वर, योग माया के अधीश, ऐसे अलग अलग योगाधीश भगवान क्या किए, उल्बणम अग्नि मुखेन पीतवा, वो भयंकर आग को अपने मुख से पी गए। तो आग क्यों पी गए, बहुत सारे रास्ते थे, वो करतुम अकर्तुम है ना, भगवान शंकर सिर्फ मन में विचार भी कर लेते तो कुछ भी हो जाता, इंद्र को बारिश करनी पड़ती, लेकिन क्यों पिए। चक्रवर्ती पाद ने थोड़ा अलग से टीका लिखा है कि भगवान ने नहीं पिया, भगवान को बहुत प्यास प्यास लगी थी तो आग ने स्वयं आकर भगवान के शीतल हो गई और भगवान के हाथ में आ गई। जब भगवान के हाथ में आई तो योगाधीश, योगाधीश शब्द देने का हो, योग माया के अधीश है भगवान, तो योग माया ने कहा कि ये आग भगवान को नहीं पीनी चाहिए, भगवान ये आग मेरे लिए है, तो वो योग माया ही भगवान के हाथ से लेकर आग पी गई। मुखेन शब्द का अर्थ मेदिनी में कहा गया है कि प्रारंभ भी होता है, तो इसी अर्थ से चक्रवर्ती पाद ने यह भाव किया है कि वो भगवान ने नहीं पिया, वो योग माया ने आग पी लिया। लेकिन हरिशूरी जी कहते हैं, कुछ भाव प्रकट किए हैं, वो कहते हैं कि निशम अग्नि विदुपाद भाज शूद्राक्ष को भक्षयन्ति अद्धातु तद्वंश भवोस्मि तन्मे को नाम भीरित्य पिबन मुखेन अपिबन मुखेन, शूद्र चकोर आपि भक्षयन्ति, चकोर एक पक्षी होता है, वो चंद्र के सामने देखता रहता है, तो चंद्र के सामने देखते देखते वो अंगार भी पी जाता है। तो भगवान ने कहा कि चकोर चंद्र के सामने देखते देखते अंगार पी जाता है, तो मैं तो चंद्र वंश में ही जन्मा हूं, तो मैं क्यों आग को ना पीऊं। एक शूद्र चकोर पी जाता है, वो भी चंद्र के सामने देखकर उनमें इतना प्रभाव आ जाता है, तो मैं तो इस वंश में जन्मा हूं, तो इसी कारण भगवान ने आग पी लिया। और कहते कि स्व कारणे कार्य लयस्तु लोके प्रसिद्ध एवेत्य लम आविचारात लयम निनायेति दया धनोषो कृपीट योनि वदनाम बुझाते। स्व कारणे कार्य लयस्तु लोके प्रसिद्ध, कारण में कार्य का विलय होता है, ये बात प्रसिद्ध है शास्त्रों में, तो सभी वस्तुओं का, वैसे भी पुरुष सूक्त में कहा भी गया है कि मुखात अग्नि रजायत है ना, अग्नि भगवान के मुख से प्रकट हुई है पुरुष सूक्त में श्लोक। वैसे भी ये सब वस्तु जन्माधस्य यतनो यादि तरत स्थिति पालन, ये सब भगवान से ही तो हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कह रहे हैं कि स्व कारण कार्य लयस्तु, स्व कारण जो कार्य हो तो कार्य समाप्ति के बाद स्व अपने कारण में लय हो जाता है, तो आग कहाँ से प्रकट हुई? भगवान से ही, तो भगवान के मुख से प्रकट हुई। तो जन्म मुख से हो गया, कार्य लपट को कहेंगे और आग प्रकट तो कहेंगे। कार्य हो गया तो अपने आप मुख में आकर समा गई। तो बहुत सारे भाव दिए गए लेकिन इतना संस्कृत समझ में नहीं आ रहे भक्तों को। यह सब रसों का आस्वादन करना चाहिए। और कहते उष्णे न याति सम उष्ण मिति, ऐसा कहते हैं कि उष्णे न याति, अगर पेट कहीं पर कुछ आपने गर्म वस्तु खा लिया है तो उसके बाद तुरंत ठंडा नहीं खाया, गर्म ही खाना चाहिए। उष्णे न याति सम उष्ण, तो पहले भगवान ने आग पिए थे कालिया के साथ, तो वो आग पिए थे तो अभी भगवान को गर्म लग रहा था अंदर, तो उसको शांत करने के लिए ही दोबारा वो आग पी गए कि ठीक है शांत हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा सुंदर भाव लिख रहे हैं कि आग आग कहाँ उत्पन्न हुई, तो बोले कि वृंदावन में उत्पन्न हुई है ना, कानन में उत्पन्न हुई। यतो बद ददो अधुना भवति काननो तस्व कानने तद उचितो लयत तद इति किं वा संदते। तो आग कानन कानन में उत्पन्न हुई, कानन मतलब वन, वन में आग उत्पन्न हुई। तो भगवान ने विचार किया कि हमारे वन में आग उत्पन्न हुई है, आग प्रकट हुई है, तो मैं भी उसके स्व कानन, स्व आनन, आनन का अर्थ होता है मुख, तो मैं भी, ये संस्कृत के शब्दों की रचना ऐसी है कि इसका भाव प्रकट करते, तो मैं भी उसको क्यों स्व कानन में न रखूं, तो जहाँ से प्रकट होती है वहाँ ही मैं उसको रख देता हूँ। तो इसी बात को विचार कर स्व कानन में अपने ही मुख में रख लिया। स्व कानन मतलब अपना मुख, और आनंद मतलब वन, आनंद में उत्पन्न हुए, स्व कानन में रख दिया, तो ठीक ही किया भगवान ने, श्रुति के सिद्धांत का पालन किया है, ऐसा हरीश्वरी जी कहते। और एक भाव कहते हैं कि भक्त अर्पित प्रेम भक्ति सुधा रस भुजो विभो। भगवान भक्त अर्पित, भक्तगण जो अर्पण करते हैं उस प्रेम भक्ति सुधा रस भुज मतलब भूखते वाले, भगवान क्या भोगते हैं? भगवान भक्त जो अर्पित अर्पण करते हैं प्रेम भक्ति को, उस प्रेम भक्ति के सुधा रस को भोगते हैं, है ना। तो अग्निरेव विशद वक्त्रम तद रसास्वाद लिप्सया। तो अग्नि ने मन ही मन विचार किया, तो अग्नि को भी वह रसास्वादन करना था, तो कैसे? उनमें इच्छा हो गई, अभिलाषा, लिप्सिया का मतलब इच्छा हो गई, अभिलाषा, तद रसास्वाद लिप्सिया, उनमें इच्छा हो गई उस रस का आस्वादन करने के लिए। तो अग्नि रेव वक्त्रम आविशत, तो अग्नि ही भगवान के मुख में गई, भगवान ने कुछ नहीं किया, अग्नि चली गई उस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान के श्री मुख में। तो ऐसे बहुत सारे भाव दिए गए हैं। सभी भक्तों को संस्कृत के श्लोक को पढ़ना चाहिए, उसका पाठ करना चाहिए। भागवत रसास्वादन, रसास्वादन उनके शब्दों, एक एक शब्द पर विचार करेंगे, और हमारी बुद्धि से विचार नहीं, विचार नहीं कहा गया है, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु महाराज आचार्य, हमारे ऊपर जो जो भी आचार्य, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सिद्धर स्वामी इत्यादि, जो जो जिन जिन लोगों ने, महात्माओं ने कुछ लिखा है भागवत के विषय में, कुछ कहा है, उन लोगों के माध्यम से, या तो उन लोगों ने क्या किया है, क्या कहा है, किस श्लोक पर, उनका चिंतन, उनको स्मरण कर, उनको रसास्वादन कहा जाता है। रसास्वादन मतलब ये साप्ताहिक कथा कर देना रसास्वादन नहीं है, एक एक शब्द पर विचार, और विचार करना मतलब उसका आस्वादन, उसमें रस प्रकट होना। वो तब कब होगा? जब हम उसको पढ़ेंगे समझेंगे तब होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को आ ही जाए, थोड़ा देर हो जाए, थोड़ा देर, लेकिन क्या, फिर भी क्या, एक साल लगे, दो साल लगे, तीन, कम से कम हम अभ्यास करेंगे तो उसका एक बाद में एक लहर बनेगी कि कुछ कुछ सीखेंगे, बाद में और ज़्यादा रस आने लगेगा। अभी तो ऐसा होता है कि पुस्तक हाथ में लेते ही निद्रासन, कथा सुनते ही आँख, शाम के समय हम इतने थक कर आते हैं तो कहते हैं कि थोड़ा कथा लगा दो तो जल्दी नींद आ जाएगी। वो कथा नींद के लिए ही अब बस, ये और कोई कारण नहीं है। तो कथा सुनते सुनते सो जाते हैं सेठ लोग। कथा कथा नींद के लिए नहीं है, नींद से जागने के लिए कथा है। तो हम क्या करते हैं आजकल, उल्टा हो गया कि नींद के लिए कथा का भी। लेकिन फिर भी जो भी है हम लोग प्रयास करेंगे शास्त्रों के। ये सब क्यों लिखे हैं, ये सब ऋषि मुनियों ने क्यों दिए हैं कि जीव उसको जाने। गोपनीय के लिए नहीं रखा है कि गुप्त रहे, इसको कोई जाने ही नहीं, इसके साथ कोई मतलब ही नहीं है, नहीं, इसके लिए नहीं। सभी ऋषि मुनियों का आशीर्वाद इसमें अपने आप आशीर्वाद बरसता है, लेकिन कब बरसता है, जब हम प्रयास करेंगे तब बरसेंगे ना। हम पुस्तक हाथ में एक दो दिन, महीना, 15-20 दिन लेकर कहेंगे कुछ समझ में, तो क्या पढ़ोगे, नहीं तो क्या समझोगे, पढ़ेंगे बाद में समझेंगे ना। तो प्रयास, परिश्रम के बिना, प्रयास के बिना किसी भी वस्तु का आस्वादन मिलता ही नहीं है, चाहे कोई भी वस्तु। ऐसे ही आपको कोई 10 करोड़ दे दे और आप अपने पसीने से 10 करोड़ नहीं, 1 करोड़, तो 10 करोड़ वाला वो इतना आनंद में नहीं होगा जो अपने पसीने से, अपने परिश्रम से जो कमाया है। जितना परिश्रम करोगे उतना ही फल अच्छा और मीठा होगा। और कुछ भी नहीं आता है तो नाम जप तो है ही, लेकिन अभी उम्र है यूथ भक्तों के लिए। अभी पढ़ेंगे, अभी लिखेंगे, अभी कुछ विचार करेंगे तो हो सकता है कि वो बुढ़ापा में काम आ जाए। पढ़ना बहुत जरूरी है। सभी भक्तों को प्रार्थना है कि कुछ ना कुछ अभ्यास करें, अभ्यास श्लोक का पाठ करें। श्लोक उच्चारण नहीं हो रहा है तो सभी लोगों, सभी भक्तों को रोज पाठ करना चाहिए। एक ही अध्याय का, मतलब कोई भी अध्याय, दशम स्कंद के 19वां अध्याय का पाठ कर रहे तो 1 महीना 2 महीना जब तक वो हृदयस्थ न हो जाए तब तक पाठ करें। ऐसा नहीं आज एक ले लिया कल दूसरा ले लिया, पर इसके बाद महाराज ने कथा की है, प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी के शिष्यों ने लिखा है, उन श्लोकों के साथ उन शब्दों का मिलाप करना सीखे, मिलाप करना उसको। या तो एक बात हो गया, एक अध्याय हो गया, दूसरे कहीं पर सुनते हैं तो स्मरण रखे कि यह श्लोक में यह शब्द आया है, वो श्लोक में भी यह शब्द आया है, तो वहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अलग अलग क्यों कह रहे हैं, वहाँ पर क्या पर? अगर वो विचार इकट्ठे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा, एक दिन ऐसा होगा कि शब्दों का बहुत बड़ा भंडार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए बहुत लगता है इजी, लेकिन थोड़ा परिश्रम है, उससे चिंतन बनेगा। जब चिंतन बनेगा तब मन बुद्धि थोड़ा ऊपर उठेगा, आएगा तब आस्वादन, तब कोई कहेगा तो आनंद आएगा। आज एक गोसाई जी, गोस्वामी श्री पुरुषोत्तम शरण दास जी का आविर्भाव तिथि है, उस पर मुझे बोलने के लिए कहा गया था, लेकिन कुछ है ही नहीं। चैतन्य सरितामृत जो 2 प्यार है और चैतन्य भागवत में भी 2 प्यार हैं। वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे और वृंदावन लीला में श्रीदाम सखा थे, और वो इतने भाववेश में, कृष्ण भाववेश में रहते थे कि एक बार विष खा गए तो विष का प्रभाव भी उन पर नहीं पड़ा, तो उससे सब लोग आकर्षित हो गए। चमत्कार देखकर सभी लोग में ऐसा कोई चमत्कार दिखाता है तो सब लोग, अभी अभी तो फालतू चमत्कार दिखा रहे, कुछ चमत्कार बमत्कार है नहीं, और लोग जहाँ समोसा खा लेना, चटनी खा लेना, ऐसा ही चल रहा है। तो इससे क्या हो, हमारा कर्म का फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। मूर्ख बुद्धि है कि वो समोसा खाने से और अपने कर्म से क्या क्या उससे कोई तालमेल ही नहीं है, तो फिर समोसा खाने से अपना कर्म थोड़ी ना सीधा हो जाएगा। ये हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्रों और हिंदू संस्कृति के अभाव के कारण ये सब हो रहा है। जो व्यक्ति गीता पढ़ता है वो समोसा फमोसा सटने बटने में विश्वास नहीं करता है, वो सब बाबा फाबा के पास वो हाथ दिखाने के लिए नहीं जाता है, अपने कर्मों पर भरोसा विश्वास करते हैं। तो राम नाम के प्रभाव से तो वैसे भी कुछ भी भगवान शिव रा शब्द रख कंठ में रख कर ऊपर से जहर पी गए और बाद में मौ रख दिया, नीलकंठ हो गए। राम नाम के प्रभाव से भगवान शिव मीराबाई जहर पी लिया। तो राम नाम अमृत है, वो राम नाम कोई जपता है तो ये साधारण विष की तो क्या बात, संसार विष भी उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे श्रेष्ठ बेस्ट और त्रिभुवन चौदह भुवन में सबसे बेस्ट कोई है तो वो है भगवान का नाम, चौदह भुवन माझी फकीर विनोद ठाकुर कहते हैं। तो नाम से प्रेम से जितना करेंगे ददामी बुद्धि योगम, भगवान उतनी बुद्धि देंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा?